ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद्भागवतम स्कंद 4 अध्याय 18। अध्याय का नाम है अगले जन्म में पुरंजन को स्त्री योनि की प्राप्ति। श्लोक संख्या 19। ना मयि अनाशिते भुङ्क्ते न अश्नाते स्नाति मत्परा मयि रुष्टे सुसंत्रस्ता भर्सिते यतवा भयात्। न मयि अनाशिते भुङ्क्ते न स्नाते स्नाति मत्परा मयि रुष्टे सुसंत्रस्ता भर्सिते यतवाग्भया। नै मयि अनाशिते भुङ्क्ते न स्नाते स्नाति मत्परः मयि रुष्टे सुसंत्रस्ता भर्सिते यतवाग्भया। शब्दानुवाद ना कभी नहीं, मयि जब तक मैं अनाशिते खा नहीं लेता था, भुङ्क्ते वह खाती थी, ना नहीं अस्नाते स्नान नहीं कर लेता था, स्नाति नहाती थी, मत्परा मेरे प्रति अनुरक्त मयि जब मैं रुष्टे नाराज होता था, सुसंत्रस्ता अत्यंत डरी रहती थी, भर्सिते जब मैं डांटता फटकाराता था, यतवाक संयमित वाणी भयात डर से। अनुवाद अर्थात श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। राजा पुरंजन अपनी पत्नी के साथ अपने पुराने व्यवहारों को सोचने लगा। उसे याद आया कि उसकी पत्नी तब तक भोजन नहीं करती थी जब तक वह स्वयं खा नहीं चुकता था, वह तब तक नहीं नहाती थी जब तक वह नहीं नहा लेता था, और वह उस पर सदा इतने अधिक अनुरक्त थी कि यदि वह कभी झिड़क देता था और उस पर नाराज हो जाता था तो वह मौन रहकर उसके दुर्व्यवहार को सह लेती थी। तात्पर्य पत्नी अपने पति के प्रति सदैव विनम्र रहती है। विनम्रता, सदाचार तथा सेवाभाव पत्नी के ऐसे गुण हैं जिससे पति उसके प्रति अत्यंत भावुक रहता है। पारिवारिक जीवन में पति का पत्नी पर अनुरक्त रहना हितकर होता है, किंतु आध्यात्मिक विकास के लिए यह अधिक उपयुक्त नहीं होता। अतः घर घर में कृष्ण भक्ति की नींव पड़नी चाहिए। यदि नींव क्या होती है प्रभु? नींव पड़नी चाहिए। अच्छा, तो नींव पड़नी चाहिए। यदि कृष्ण भक्ति में पति तथा पत्नी एक दूसरे पर अनुरक्त हैं तो वे दोनों लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि कृष्ण ही उनके अस्तित्व का केंद्रबिंदु है। अन्यथा यदि पति अपनी पत्नी के प्रति अधिक अनुरक्त रहता है तो अगले जन्म में वह स्त्री बनता है। इसी प्रकार पति पर अत्यधिक अनुरक्त होने से स्त्री को अगले जन्म में पुरुष बनना होता है। निसंदेह पुरुष बनना स्त्री के हित में है, किंतु पुरुष के लिए स्त्री बनना तनिक भी लाभप्रद नहीं है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथनितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखानितं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिका कंत राधा कंत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि रे प्रिय वंशाकल्पतरुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। न मय्या नाशिते भुङ्क्ते न स्नाति स्नाति मत्परः मयिरुष्टेषु संत्रस्ता भर्षिते यदवाग्भयात्। राजा परंजन अपनी पत्नी के साथ अपने पुराने व्यवहारों को सोचने लगा। उसे याद आया कि उसकी पत्नी तब तक भोजन नहीं करती थी जब तक वह स्वयं खा नहीं चुकता था। वह तब तक नहीं नहाती थी जब तक वह नहीं नहा लेता था, और वह उस पर सदा इतनी अधिक अनुरक्त थी कि यदि वह कभी झिड़क देता था तो उस पर नाराज हो जाता था, तो वह मौन रहकर उसके दुर्व्यवहार को सह लेती थी। जब भगवान शंकर जी प्रचिताओं को उपदेश दे रहे थे, तभी ये समय जब नारद मुनि सोचने लगे कि मुझे प्रचिताओं के बाप को उद्धार करना है, क्योंकि उनका ये प्राचीन अवर्षत इसका नाम था, उसके प्रति बहुत नारद मुनि कृपा करने के लिए प्रयास किए। कहने लगे कि ये हमारे भक्त ध्रुव के वंशज है, तो इसी ध्रुव के वंशज प्राचीन वर्षत को उद्धार करना मेरे लिए बहुत कर्तव्य है। अभी कोई किसी शुद्ध साधु के अगर शिष्य बन जाता है, उसके आधार पर चलने के लिए प्रयास करता है, जीवन में सिद्धि प्राप्त करता है, भगवान के भक्ति को प्राप्त कर लेता है, तो फिर जो साधु शिष्य के ऊपर कृपा किए थे वो सिर्फ शिष्य के ऊपर कृपा नहीं करते हैं अभी तो पूरे वंशज के ऊपर कृपा करते रहते हैं। जैसे अभी प्राचीन वर्ष ध्रुव के वंशज कई पीढ़ियों के बाद ये आए, उनके ऊपर नारद मुनि की कृपा हो रहा है। वो याद कर रहे हैं कि अभी ध्रुव मेरा भक्त था, मैं जो कहा वही माना, अभी ध्रुव के कारण और एक जीव का उद्धार होगा। तो प्राचीन वरिष्ठ को कैसे बदला जाए इसके लिए नारद मुनि सोचने लगे कि ये राजा जो है बहुत स्टोरियों को लाइक करता है, बहुत मुंडन स्टोरीज कहानी वगैरह जो है सांसारिक लोगों का उसको बहुत सुनने की पसंद करता है, सुनने के लिए बहुत पसंद करता है, बहुत लाइक करता है, तो इसलिए उसको कुछ ऐसा कहानी सुना जाए जिसके माध्यम से ये प्राचीन वरिष्ठ की उद्धार हो जाए। तो जब साधु किसी जीव को कुछ ज्ञान देते हैं तो उसके लक्षण स्वभाव उसके चॉइस पसंद के आधार पर उसको गाइड करने के प्रयास करते हैं। जब विदुर मैत्रेय संवाद में तृतीय स्कंद भागवत में ये विषय वस्तु आता है कि विदुर जी मैत्रेय को कहते हैं मुनिर विवक्षुर भगवत गुणानाम, मुनि व्यास मुनि कहते हैं कि आपके जो मित्र हैं सखा हैं भगवान के गुणों को वर्णन करने की इच्छा लेकर के उन्होंने महाभारत ग्रंथ का रचना किया और महाभारत ग्रंथ के अंदर अनेक ग्राम्य सुखों का वर्णन है, ग्राम्य सुखानुवादेर। तो उन्हीं ग्राम्य सुखों का वर्णन इसलिए किए हैं कौन ना व्यासदेव, ताकि लोग उसको पढ़े, अगर उसको पढ़ेंगे तो फिर उनको ग्राम्य सुख में मन नहीं लगेगा, अब तो ग्राम्य सुख को सुन करके उनके मन में विरक्त आएगा, क्योंकि उसका संजोग पुराण में रहता है, उसका वर्णन पुराण में होता है और उसका रिलेशन्स भक्तों के साथ होता है। तो यही कारण था जिसके कारण महाभारत में अन्य एक ऐसा स्टोरी है, कहानी है जो सांसारिक लोगों के लिए है। तो ये जो पुरंजन के आख्यान है चार पांच अध्याय में विस्तृत रूप से वर्णन हुआ है। भौतिक जगत में लोग एक काम करने के बाद दूसरे काम करने में बहुत प्रयास करते हैं, बहुत जल्दबाजी करते रहते हैं, उनके पास समय नहीं है, मन चंचल है, बहुत कुछ है। इसी के कारण ये लोग ये पांच अध्याय को विस्तृत रूप से पढ़े सुने और इसका जो गुह्यतम रहस्य है नारद मुनि इच्छा कर रहे हैं वर्णन करने के लिए वो समझे और उसके आधार पर काम करे अथवा कृष्ण भक्ति में जो निष्कर्ष है उसको प्राप्त करे, ये जीवों के लिए बहुत कष्टदायी है। मतलब समझना, सार को निकालना बहुत ये है। तो नारद जैसे मुनि उसको वर्णन करने के लिए बहुत प्रयास किए, कहाँ से पांच अध्याय लेकर के। तो क्यों, ये राजा प्राचीन वरिष्ठ बहुत इच्छा करता था कि मुझे कुछ अच्छा स्टोरी के माध्यम से सुनाया जाए, तो नारद मुनि उसी को इसी पुरंजन आख्यान वर्णन करना शुरू किए। तो पुरंजन कौन है? पुरंजन हम सब हैं। पुरंजनम शब्द का अर्थ है पुरम जनयति इति पुरंजनम। पुरम जनयति, पूर को जो चॉइस करता है, पसंद करता है, पूर को अथवा शरीर को अथवा नगर को जो सृष्टि करता है उसका नाम है पुरंजन। ऐत्रेय उपनिषद में एक बात आता है, एक कई स्त्रियां थे तो कई स्त्रियों को उनके मनपसंद के हिसाब से कुछ चीज देने के लिए प्रयास किया गया। तो स्त्रियों को जब प्रयास किया गया तो स्त्रियों को पूछा गया, स्त्रियां सब समय सुखों की प्राप्त करने का अभिलाषा लेकर के बहुत कर्म करते हैं अथवा जीवन में धन प्राप्ति करने का अभिलाषा रखते हैं, तो स्त्रियों के सुखों के आधार पर स्त्रियों को पूछा गया और स्त्रियों को पूछा गया कि आप अगर अपने ही स्त्री शरीर में संतुष्ट नहीं हो तो फिर कौन सा शरीर धारण करना चाहते हो। तो वहां पर पूछा गया कौन सा शरीर धारण करना चाहते हो, उसके हिसाब से हम आपको देंगे इस शरीर। तो वहां पर उनको पूछा गया, जब कहा गया तो उसके आधार पर स्त्री उत्तर दिए, तभ्यो हो गाम अनायत। गायों को उनके सामने लाया गया कि आप गाय जैसा बनना चाहते हैं क्या, उनके पास लाया गया अगर आपके अपने स्त्री के शरीर में इतना सुख नहीं मिल रहा है तो फिर गाय के शरीर में सुख मिलेगा क्या, गाय का शरीर धारण करना चाहते हो, तभ्यो हो गाम अनायत। फिर स्त्रियां कहने के लिए नहीं वह नहीं, हमको नहीं चाहिए, अयम अड़मिति, नहीं नहीं ये बहुत है, हम अपने शरीर में ठीक है, हमको गायों का शरीर नहीं चाहिए, स्त्रियां कहने लगे। फिर उसके बाद उनके सामने लाया गया कि घोड़े को, तभ्यो हो अश्वम अनायत। फिर उनके लिए घोड़े को लाया गया, तो घोड़े को जब लाया गया उनको पूछा गया कि घोड़े बनना चाहते हो क्या, तो फिर स्त्रियां कहने के लिए नहीं वह अयम अड़मिति, नहीं नहीं हम अपने शरीर में ठीक है, हमको गायों का शरीर नहीं चाहिए कि घोड़ों का शरीर नहीं चाहिए, गायों का सिंह है घोड़ों का सिंह नहीं है, इसलिए हम अपने शरीर में ठीक है। फिर उसके बाद 80 लाख जो शरीर है वो सबको एक के बाद उन शरीर को लाया पास। तो स्त्रियों के विचारधारा के आधार पर उन्होंने कहा नहीं हमको शरीर नहीं चाहिए, क्यों गाया इतना सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं कर पाते अपने जीवन में, उनके जीवन में बहुत संकट है, लोग काट करके भी खा लेंगे कलयुग में, उसका कुछ ठिकाना नहीं है, और घोड़ों का सिंह नहीं है, ऐसे अनेक प्रकार के प्राणियों का शरीर जब दिखा गया तो फिर स्त्रियां कहने लगे नहीं हमको कुछ भी शरीर नहीं चाहिए, हम बस अपने ही शरीर में है, अगर बनना चाहते हैं तो फिर पुरुष बन करके आएंगे फिर नेक्स्ट जीवन में। तो ऐसा उपनिषद में इत्र उपनिषद में आता है। तो वास्तव में जीव जो इंद्रिय तृप्ति करना चाहता है अपने ही नगर में रह करके अनेक प्रकार, एक एक शरीर जो लाया गया उस एक एक शरीर था एक एक नगर, उसी एक एक नगर में स्त्री लोग रमण करते हुए उनको सुखों की प्राप्ति नहीं हुआ, विचारधारा करने लगे किसी किसी नगर में मुझे सुख प्राप्त होगा, किसी किसी नगर में उनको सुख प्राप्त नहीं हुआ, सुख प्राप्त जब नहीं हुआ तो अंत में कहीं नहीं, मनुष्य का शरीर बहुत पर्याप्त है भौतिक सुखों को भोगने के लिए। तो जब ये मनुष्य शरीर बहुत पर्याप्त है नौ द्वारा रूपी पूरी में भौतिक सुखों को भोगने के लिए, तभी जीव इस संसार में रह करके, इस भौतिक जगत में रह करके इसी इंद्रियों के माध्यम से सुखों को अर्जन करता रहता है। और यहाँ पर ऐसा एक सब्जेक्ट मैटर आता है जो इस सोसाइटी के साथ रिलेटेड है, अगर एक व्यक्ति ठीक होता है अच्छी तरह से साधु बनता है तो फिर अनेक लोगों को प्रभावित होता है, प्रभावित करता है वो ठीक, अगर एक व्यक्ति साधु हो जाता है तो फिर अनेक व्यक्ति साधु बन सकते हैं, चोरों का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसी पुरंजन उपाख्यान में ये जो स्थिति है अभी कि एक पुरुष अपने पत्नी के प्रति आसक्त होता है, लेकिन शास्त्र में वर्णन है जब एक शिष्य गुरु की सेवा करता है, बहुत सेवा करता है, स्त्री जितना पति की सेवा करता है शिष्य भी अपने गुरु का सेवा उतना ही करता है, अपने जीवन दे देता है गुरु के लिए, लेकिन गुरु उसी शिष्य को उद्धार करने के लिए प्रयास तो करते हैं लेकिन उसके शरीर के प्रति इतना आसक्त नहीं रहते हैं, उससे एसोसिएशन नहीं लेते हैं। लेकिन समस्या ये कि यहां पर जब स्त्री पुरुष की सेवा करता है, पुरुष का इंद्रियां जो डिफेक्टिव है स्त्री के सेवा के प्रति सेवा से मोहित होकर के उसके शरीर और उसके लक्षण के साथ अटैचमेंट हो करके फिर पतित हो जाता है, फिर अन्य प्रकार का शरीर धारण करता है। श्रील प्रभुपाद जी का जो इजोलने श्लोकनाथ महाराज वर्णन करते हैं, प्रातः काले प्रभुपाद स्मरणीयम कष्ट पर्वते चरणीयम दुख सागरे तरणीयम मम भागवत कथा श्रवणीय। कहते हैं कि प्रभुपाद को सुबह क्या स्मरण करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्यों? क्योंकि प्रभुपाद का जो जीवन शैली है वो आप लोगों को पता है, साधारण जीवन है और बहुत हाई चिंताधारा है, हाई फिलोसफी है, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग उनका जीवन शैली है श्रील प्रभुपाद जी का। तो इन सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग के अंदर, उनके हृदय के अंदर सिर्फ भारत वर्ष के प्रति नहीं अपितु पूरे जगत के प्रति कल्याण करने की जो इच्छा था, ये हम लोगों को प्रतीत होता है। प्रकृति के द्वारा बनाया गया मार्ग, चाहे वो दैव प्रकृति हो अथवा आध्यात्मिक प्रकृति हो अथवा भौतिक प्रकृति हो, प्रकृति के द्वारा जो व्यवस्था किया गया किन के लिए ना, प्रभुपाद जी के लिए। उसी समय वो विदेश गए, अमेरिका गए, जिस समय उस स्थान में बहुत अशांति छाया हुआ था। तो प्रभुपाद जी को जो प्रकृति ले गए, अगर किसी जीव के हृदय के अंदर जगत के लोगों के प्रति कल्याण भाव मनोभाव नहीं रहेगा तो फिर उसी को उसी स्थिति में नहीं ले जा सकते। तो प्रभुपाद के जीवन काल में ऐसा ही दिखाई पड़ता है, जिसके कारण उन्होंने एक ऐसा सोसाइटी किया जिसके अंदर सारे विश्व रह सकता है। तो ये उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि विश्व के लिए सोचते थे कि कैसे विश्व का कल्याण हो, आत्यंतिक मंगल हो। लोकहितम मम करणीयम, लोकहित कार्य मुझे करना है, प्रभुपाद जी की जो इच्छा है। तो लोकहित कार्य भागवत और भगवद गीता के माध्यम से हो सकता है, ये कहते हैं जब परीक्षित प्रश्न कहते हैं, वर्याने सत्य प्रश्न कृतम लोकहितम नृप, सुखदेव गोस्वामी को कहना पड़ता है लोकहित कार्य। तो लोकहित कार्य जीवों को हो सकता है तभी जब हम क्या करें ना, भागवत और भगवत गीता को बीच के अंदर, जीवन के जो कर्म है कर्म के बीच के अंदर रखते हैं, फिर लोकहितों का काम हो सकता है। तो प्रभुपाद जी के अंदर ये प्रयास था, तो उन्होंने कर दिखाया 1965 में, ये करके बिल्ट अप करके इस्कन। तो इस्कन के अंदर जो रहस्य छुपा है वो क्या है ना, कृष्ण कॉन्शियसनेस। कोई अगर रजिस्ट्रेशन करता है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना मृत संघ का, तो फिर वो कृष्ण कहेगा, एटलीस्ट कृष्ण कहेगा। सोसाइटी कहने से उसको जो फायदा नहीं मिलेगा, लेकिन कृष्ण कहने से फायदा मिलेगा। इसलिए प्रभुपाद जी पहले गॉड कॉन्शियसनेस के बारे में सोचे, लेकिन नहीं, कहे ज्यादा फायदा लोगों को होगा अगर कृष्ण कहे, कृष्ण कॉन्शियसनेस कहे। तो उन्होंने कृष्ण का शब्द को सोसाइटी के बीचों बीच जोड़ दिया, चाहे लोग कैसे भी सोचे इस सोसाइटी के बारे में, लेकिन ये होना चाहिए कि कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो प्रभुपाद जी का कैसे ना लोग, जैसे अजामिल के जीवन में चरित्र में आपको पता होगा, जब अजामिल नारायण का वो ट्रांसेंडेंटल साउंड वाइब्रेशन कहां तक गया, वैकुंठ तक गया, वो ट्रांसेंडेंटल साउंड वाइब्रेशन वैकुंठ तक गया, जिसके कारण चार लोग आए और वो महापापी था, उससे भी पापी हम सब हैं अथवा इस संसार के लोग हैं। तो अगर कृष्ण कहे गए तो फिर ट्रांसेंडेंटल साउंड वाइब्रेशन बहुत जल्दी ही जाएगा, भगवान कृष्ण उसको उद्धार करेंगे। तो प्रभुपाद जी के जो लोकहित कार्य है उसके अंदर छुपा हुआ है। एक बार अगर कोई कृष्ण का नाम लेता है तो फिर उसका सेवा का अनुष्ठान होता है, सेवा का प्रयास करता है, नाम सेवा करता है। अगर एक बार किसको कृष्ण कहलवाता है तो फिर उसके अंदर उसको नाम का प्रभाव पड़ता है अथवा लोगों के ऊपर पड़ता है, ये सेवा होता है। तो इसी के कारण हम लोगों को जो भी छोटे मोटे सेवा करते हैं हम अपने जीवन में, चाहे कोई छोटा प्रचार कर रहा है, कोई बड़ा प्रचार कर रहा है, कोई मास प्रीचिंग कर रहा है, बहुत सारा प्रचार का एक्टिविटी चल रहा है, तो हम लोगों को कभी निरुत्साहित नहीं होना चाहिए कि हम छोटा प्रीचिंग करते हैं कोई बड़ा प्रीचिंग करता है। क्यों? प्रीचिंग वास्तव में छोटा और बड़ा नहीं होता, प्रीचिंग प्रीचिंग ही होता है। श्री सार्वभौम भट्टाचार्य जगन्नाथपुरी में थे, चैतन्य महाप्रभु कहने लगे कि मैं जगन्नाथपुरी आया, सार्वभौम भट्टाचार्य एक मायावादी श्री कृष्ण का, श्री जगन्नाथ जी का सुदभक्त हुआ, मेरे जीवन सार्थक हुआ। एक व्यक्ति तो प्रीचिंग छोटा बड़ा नहीं होता है, आप किसको कितना ऊपर तक उठा पाते हो ये हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है। चाहे हम दो को प्रीचिंग करें अथवा चारों को प्रीचिंग करें अथवा कितने को प्रीचिंग करें। इसलिए प्रभुपाद जी ने अथक प्रयास किया, बहुत कष्ट उठाया, कष्ट उठा के कृष्ण चेतना का जो प्रसाद सारे जगत को वितरण किया। और इसलिए प्रभुपाद जी ने जो करके दिखाए संसार में और कोई आचार्य ऐसा कर नहीं पाएंगे अथवा करना बहुत असंभव है। उन्होंने जिस जिस स्तर से जीवों को नीचे से बहुत ऊपर उठाए हैं। श्रील प्रभुपाद जी पहले जब गए थे तो उनको बहुत ये अनुभव हुआ कि ये असंभव है इसी भौतिक जगत में, इसी स्थान में प्रचार करना, तो वो वापस ही आने वाले थे। और श्रील प्रभुपाद जी उसको और एक बार भी कहने लगे, वास्तव में इस संसार को आने की मेरा इच्छा नहीं था, परंतु श्री कृष्ण ने मुझे डिमांड किया। कृष्ण ने कहा कि अब जाओ, आई विल डू ऑल अरेंजमेंट्स फॉर यू, मैं आपके लिए सब व्यवस्था करूंगा, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो उन्होंने ये कहा तो प्रभुपाद जी भगवान कृष्ण के विश्वास के आधार पर प्रचार करने के लिए गए थे और प्रचार में उनको सफलता मिला। तो ये जो कष्ट उठाना है जीवों के लिए है, ये सब लोग वास्तव में कर नहीं पाते। बहुत रेयर पर्सनालिटी व्यक्तित्व हैं जो इस संसार में करते हैं, प्रभुपाद जी को अथवा प्रभुपाद जैसे व्यक्तित्व इस संसार के लोगों को सांसारिक दुखों से उठाने के लिए। तो हम लोगों को भी श्रील प्रभुपाद जी की जीवन शैली से उदाहरण लेना चाहिए। हालांकि हम लोग प्रभुपाद जी जैसे व्यक्तित्व नहीं है, परंतु श्रील प्रभुपाद जी हम लोगों को एनकरेजमेंट करते हैं बार बार कि यू आर ऑल क्वालिफाइड टू प्रीच कृष्ण कॉन्शियसनेस, आप सारे योग्य हो कृष्ण चेतना का प्रचार करने के लिए। जब भारत में आए तो फिर देखने लगे वृंदावन के, तो फिर वृंदावन के लोगों को कहने लगे, दिस पीपल आर 90% कृष्ण कॉन्शियसनेस, दिस पीपल आर 90% कृष्ण कॉन्शियसनेस, प्रभुपाद जी ऐसा कहने लगे, 90% ये लोग कृष्ण चेतना में समर्पित है। तो हम लोग जो कृष्ण चेतना में प्रचार करने के लिए प्रयास करते हैं, तो उनके लिए ये जो कर्तव्य पुरंजन के माध्यम से हमको मिलता है, प्रभुपाद जी देते हैं, उनका अभिप्राय यही है कि वर्णाश्रम धर्म में स्त्री का संबंध पत्नी का संबंध पति के साथ कैसा हो, पति का संबंध पत्नी के साथ कैसा हो, तो वो वर्णन करने की प्रयास करते हैं अथवा समझाने के लोगों को प्रयास करते हैं। और इसी के कारण उन्होंने तात्पर्य में वो बताते हैं कि एक पत्नी अगर पुरुष की पति की सेवा करता है तो फिर पति का कर्तव्य होता है उसके देखभाल करना, परंतु उसके प्रति उसको आसक्त ज्यादा होना नहीं चाहिए। जब भगवान राम जी पंचवटी में रहते थे तभी लक्ष्मण और सीता दोनों रहते थे उनके साथ, तभी कई महीना तक श्री राम जी के सेवा सीता जी करने लगे अकेले में जब लक्ष्मण की अनुपस्थिति में, तो इतना विनय हो करके सीता जी सेवा कर रही थी भगवान श्री राम के। तो अगर वो सब्जेक्ट मैटर हम पढ़ेंगे तो फिर सीता की इतने विनय भाव के कारण श्री राम जी सीता को बचाने के लिए पूरे राक्षस वंश का नाश करवा दिया। वो सीता जो इतना कष्ट उठाई वनवास, और वनवास में श्री राम की इतनी सेवा, तो वास्तव में उन्होंने राक्षसों का विनाश किया, मानव का विनाश नहीं किया, अधर्म का विनाश किया। तो फिर पत्नी जहाँ पर धर्म से युक्त होकर के पति की सेवा करता है, वहाँ पर पत्नी पति पत्नी के धर्मयुक्त सेवा को धर्मपरायण होकर के उसकी रक्षा करता है। इसी के कारण जो पति पत्नी सेवा करती है, चाहे छोटा हो बड़ा हो, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। जब गुरु शिष्यों के साथ रिलेशन जोड़ते हैं अथवा शिष्य गुरु के साथ रिलेशन जोड़ते हैं, वो किसी छोटे अथवा बड़े सेवा के आधार पर नहीं होता है। वो होता है कितना शुद्ध तरीके से एक छोटा सा सेवा जीव किया अपने गुरु के लिए अथवा भगवान के लिए, वो मुख्य है। आप एक सब्जेक्ट मैटर पता होगा, श्री रामायण में मिलता है, जब सेतु का निर्माण हो रहा था श्री राम जी का, तो सेतु का निर्माण हो रहा था श्री हनुमान जी, जंबुमंत और अंगद वगैरह सब बड़े बड़े चट्टान पहाड़ डाल करके आकर के डालते थे, समुद्र पर पुल बना रहे थे। तो जब पुल बना रहे थे तभी उसी पुल को बनाने के लिए एक गिलहरी, गिलहरी राइट, तो गिलहरी वो भी कुछ कुछ छोटा मोटा सेवा कर रही थी। तो पहले समुद्र को सुखाने के लिए भगवान राम ने प्रयास किए, तो गिलहरी क्या किया ना, उसी समय स्नान करके समुद्र में समुद्र के जल को सुखाने की प्रयास करता था। तो स्नान करके पानी को ला करके ऊपर डालता था, ऊपर डाल करके सोचता था कि मैं समुद्र को सुखा दूंगा, फिर बालू में रेत में अपने शरीर को सुखा करके उसी रेत से जो बालू प्राप्त हो रहा था उसी को चट्टान को डालने के बाद जो गैप रह जाता था, फांका रह जाता था, उसी फांका में बालू भर करके ताकि भगवान राम अथवा लक्ष्मण जब इसी पुल पर चढ़ करके जाएंगे तभी उनके पैर में किसी भी तरह का कष्ट का अनुभव न हो, इसी के कारण वो भी सेवा करता था। तो हनुमान जी और अंगद जी सब प्रयास किए, अपने अपने सेवा करते थे, तभी आकर के देखने लगे कि ये जो छोटा सा जीव है ये हमको यहाँ पर डिस्टर्ब कर रहा है, यहाँ पर हमारी समस्याओं का कारण बन रहा है, हमको ये क्या करना है, ना फूल बनाना है, समय हमारे पास कम है। तो फिर ये जब कर रहे हैं पुल बनाने के कार्य, तो फिर जाकर के भगवान राम से कहने लगे कि प्रभु ये देखिए छोटा सा जीव हमारे काम में बाधा डाल रहे हैं, उसको रोकिए। तो भगवान राम कहने लगे नहीं, वो अपना कर्म कर रहा है, तुम लोग अपना काम करो, तुम लोग क्यों उनके सेवा में डिस्टर्ब कर रहे हो, ऐसा वो कहने लगे, आप लोगों को डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं। संसार में भगवान कृष्ण अथवा राम सबको इस संसार में स्वतंत्रता प्रदान किए हैं, जो चाहे जैसे चाहे सेवा कर सकता है, सब सेवा किए। तो तभी क्या हुआ ना, भगवान राम जी इसकी सेवा में संतुष्ट हो करके उसी गिलहरी को, जीव को अपने बाएं हाथ में उठा लिए, यहां पर हाथ में उठा करके उसको आशीर्वाद दे, उसके ऊपर शरीर के ऊपर हाथ रख दिए, जिसके कारण आपको पता होगा कि स्पट है उसके पीठ पर, हैं? तो उसके आशीर्वाद दे दिए भगवान राम। कृष्ण चेतना में छोटा सा सेवा का भी महत्व बहुत है। ऐसा भी हो सकता है छोटा सेवा जो कर रहा है उसको भगवान राम जैसा जीव को उठा सकते हैं, ऐसा नहीं कि भगवान राम हनुमान जी को नहीं उठाए, हनुमान जी को भी बहुत उठाए, लेकिन जीवों का उद्धार में मार्ग में भगवान कृष्ण राम और भक्तों का हृदय बहुत विशाल है, वो सबको उद्धार करने के लिए अनेक अनेक ढंग से प्रयास करते हैं। उसको राम जी उठाए उसको आशीर्वाद किए फिर छोड़ दिए। और ऐसे ही श्री रामचंद्र जी छोटे और बड़े सेवा का अंतर कुछ नहीं पाए सेवा में। तो हम लोगों के जीवन में ये जो पुरंजन की चरित्र में एक अनेक विषय वस्तुओं के अंदर एक जो विषय वस्तु है कि हम अपने शरीर के प्रति अत्यधिक आसक्त न हो। जब आप लोगों को पता होगा श्री नामाचार्य हरिदास ठाकुर और प्रह्लाद इन दोनों के जीवन में कृष्ण भक्ति की प्रचार करने के लिए बहुत कष्टों को उठाए। जब वास्तव में प्रभुपाद जी की जो प्रचार है, मैंने जैसे कहा पहले कि बहुत विशाल हृदय वाले हैं, विश्वों की कल्याण के लिए सोचते हैं, ये पूरा परंपरा से आ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ का जो प्रचार, ये विश्व की कल्याण के लिए वास्तव से हम लोगों को प्रतीत होता है नामाचार्य हरिदास ठाकुर के समय से। हरिदास ठाकुर और चांद काजी के बीच थोड़ा सा वार्तालाप होता था, झगड़ा होता था, झगड़ा नहीं अभी तो किसी विषय वस्तु पर नामाचार्य हरिदास ठाकुर चांद काजी की बात नहीं माने। चांद काजी कहने लगे, तुम तो मुस्लिम हो, तुमको ये हिंदुओं का धर्म की पालन करने की क्या आवश्यकता है, वो कहने लगे। तो पूरा तरह से प्रतिबंध लगा दिया उनके ऊपर कि नहीं, तुमको हिंदू धर्म पालन नहीं करना है, मना कर दी। तो चांद काजी की बात सुनकर के हरिदास ठाकुर कहने लगे कि क्यों ऐसा, क्या ऐसा खराब है, अगर मैं मुसलमान हूं और मैं ये हिंदू धर्म का आचरण करता हूं, कृष्ण कहता हूं, हरि कहता हूं, तो फिर क्या खराब है। कई ऐसे मुसलमान है अथवा कई ऐसे हिंदू है जो मुसलमान बन गए हैं, कई ऐसे हिंदू है जो मुसलमान बन गए हैं, अगर मैं एक मुसलमान हिंदू बन गया तो फिर समस्या क्या। वो ऐसा कहने लगे, किसको, ना चांद काजी को। हरिदास ठाकुर जब ऐसा कहने लगे तभी चांद काजी की समझ में नहीं आया। अब उनके कहने की यथार्थता थी कि दाविर खास साकर मलिक के तो सब वहीं पर ही काम करते थे, उनके वहां पर नाम सब चेंज हो गया था, तो फिर ये लोग अगर चेंज नहीं हो जाते हैं तो फिर हम क्यों नहीं हो पाएंगे। तभी चांद काजी उनको बहुत पीटे वाइस बाजार में, लेकिन फिर भी हरिदास ठाकुर कृष्ण चेतना का रंग कभी नहीं छोड़े। मीराबाई और हरिदास ठाकुर, इनकी जीवन चरित्र देखे तो फिर लगभग एक ही जैसा दिखाई पड़ता है। मीराबाई को कष्ट उठाना पड़ा, हरिदास को बहुत कष्ट उठाना पड़ा और प्रह्लाद को भी बहुत कष्ट उठाना पड़ा, लेकिन ये लोग प्रचार के कार्य में लगे रहे। तो हम लोग इसी पुरंजन के चरित्र में, हम लोगों को जब भगवान कृष्ण भगवत गीता में बताते हैं कि शरीर के प्रति जीव को कितना आसक्त होना चाहिए, लाभ जीवित जावदा जीव से तत्व जिज्ञासनार्थ चेह कर में भी, एक जीव को शरीर के प्रति आसक्त रहना है, शरीर को रक्षा करना है, इसी के लिए जितना खाना जरूरी है उतना ही खाना चाहिए ताकि उसका चेतना ठीक रहे। अगर उससे ज्यादा वो खा लेता है अथवा उससे ज्यादा संग्रह करता है, वही संग्रह खाना पीना सब कुछ उसके जीवन का ना उसको जीवन को नाश कर सकता है। इसके कारण वो कहने लगे कि जीवन का जो उद्देश्य है वो तत्व जिज्ञासा है और कुछ नहीं है, इसके कारण जीवन को धारण करने के लिए जितना खाना की आवश्यकता है उतना ही खाना चाहिए, ये उन्होंने कहा। सुत गोस्वामी सनकादि ऋषियों को कहते हैं। फिर सुत गोस्वामी जो ये बात कहते हैं तो फिर उसी का स्कंद में ये बात कहते हुए सुत गोस्वामी और एक चीजों को कहते हैं सनकादि ऋषियों से कि जीव अगर जीवन धारण करता है तो फिर वो अगर घर के प्रति आसक्त होता है अथवा परिवार के प्रति आसक्त होता है तो फिर ठीक है। नहीं, ये बात शिला प्रभुपाद जी के जीवन में आता है, सुत सोन के संवाद में नहीं आता है। शिला प्रभुपाद जी को पूछने लगे कना उनके शिष्य कि प्रभुपाद जी क्या भगवत धाम में जाने के लिए क्या 100% कृष्ण चेतना जरूरी है? पूरा कृष्ण चेतना थोड़ा सा कम रह जाती है अथवा कहीं हमारा ये नहीं है? तो प्रिसला प्रभुपाद जी कहते हैं कि नहीं नहीं अगर 90% चेतना आप अभ्यास करते हो, 90% कर लेते हो तो फिर आप भगवत धाम चली जाओगे। तो फिर जो भक्त लोग 90% कवर करने में असमर्थ हैं तो फिर उन्हीं को कहने लगे, दुखी देखने लगे श्रील प्रभुपाद जी, कभी इन लोगों को क्या होगा स्थिति। तो प्रभुपाद अपने शिष्यों को जब देखे अथवा फॉलोअर्स को जब देखे कि ये लोग असमर्थ है तो फिर कहने लगे नहीं 80%। श्रील प्रभुपाद जी व्यास ने प्रवचन दे रहे थे, देखे कहने की 80% अगर होगा तो फिर भगवान ले जाएंगे। फिर देखने लगे कि नहीं नहीं फिर भी कुछ लोग हैं जो इसको कवर करने में असमर्थ है। तो भक्तों की उत्साह को बढ़ाने के लिए श्रील प्रभुपाद जी कहने लगे अगर 70% है तो फिर आप भगवत धाम जा सकते हैं। हालांकि हमारे जीवन में जो भी क्रिया हम लोग करते हैं राइट नाउ, अगर हम लोग कृष्ण चेतना का श्रवण करते हैं, भागवत कथा का श्रवण करते हैं, मैं कहता हूं अथवा मैं कहता हूं, मैं सुनता हूं, आप कहते हो, आप सुनते हो, हमारे लिए जो प्रिंसिपल भगवान कृष्ण दिए हैं वो क्या है? वो यही है कि सुख दुख से हम लोगों को ऊपर उठना है। दुखेशु अनुद्विग्न होना सुखेशु विगत स्पृहा। हमारा जो मन है ये अगर सुख और दुख के साथ सब समय प्रभावित होता है अथवा इसी के साथ सुख दुख के साथ निर्माण होता है तो फिर हम लोगों को समझना चाहिए कि जरूर हम इस संसार में फंसने वाले हैं। इसके कारण अनुद्विग्न मन नहीं करना है अथवा विगत स्पृह नहीं होना है। इसी के कारण हम लोगों को कृष्ण कहते हैं सुख और दुख हमारे जीवन में ये बार बार आएगा। क्यों? क्योंकि मात्र स्पर्शस्त कौनते, हम मात्राओं के साथ संबंधित हैं। तो अभी का जो मुख्य नियम है हम लोगों के लिए कि अगर हम कृष्ण चेतना का अभ्यास सही ढंग से करना चाहते हैं तो फिर जब भी हमारे जीवन में सुख दुख आता है उसी समय हमको अपनी चेतना को जागृत करना है। ये कृष्ण कॉन्शियसनेस चेतना है, चेतना को जागृत करना है। वो क्या है ना, कृष्ण गीता में कहते हैं कि जनरली जब सुख आता है भक्तों के जीवन में वो झटिति जल्दी उसको स्वीकार कर लेते हैं, दुखों को टॉलरेट कर लेते हैं, सह लेते हैं, लेकिन सुख को सहना अथवा सुखों के साथ डीलिंग्स करना उनके पास नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि सत्वगुण का प्रबल्य है, सत्वगुण बहुत है। क्योंकि कृष्ण चेतना का अभ्यास करते हैं, सुबह उठते हैं, अनेक प्रकार का क्रियाएं करते हैं सत्वगुण में रह करके, सत्वगुण का बहुत प्रावल्य है। भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं सत्वगुण का स्वभाव है निर्मलत्वात्, निर्मल। सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन च अनघा। निर्मल है, शुद्ध है सत्वगुण, इसके कारण जीवों को सुख मिलेगा और ज्ञान भी मिलेगा। लेकिन ये सुख जो मिलेगा और ज्ञान जो मिलेगा ये भी उसका बंधन का कारण है। इसके कारण वो कहते हैं कि उसी से ऊपर जाना है, सत्वगुण से ऊपर भी जाना है, विशुद्ध सत्वगुण भी जाना है। लेकिन जनरली अगर कोई 5-4 भक्त मिल करके बातचीत करते हैं, उसी बातचीत में उनको आनंद मिलता है तो फिर सब चाहते कि चलो उन लोगों को वहाँ पर बातचीत में आनंद मिलता है, थोड़ा शेयर करते हैं, वहाँ पर जा करके बातचीत करते हैं, रहते हैं, करते हैं। तभी जब जाते हैं तभी बातचीत करते हैं, फिर क्या होता है ना, वहाँ पर बातचीत करके आनंद प्राप्त करते हैं। लेकिन जनरली वो नोटिस नहीं करते हैं कि ये सत्वगुण का लक्षण है जहाँ पर ये सारा चीज़ उद्गम हो रहा है, ये सारा चीज़ प्राप्त हो रहा है। तो जनरली ये सारा चीज़ हमारे जीवन में घटता है। लेकिन अगर हम चेतना को जागृत करके भगवान कृष्ण के प्रिंसिपल के आधार पर जीवन शैली मोड्स ऑफ मेटेरियल नेचर के साथ डीलिंग्स करते हैं तो फिर प्रगति बहुत जल्दी होता है। जैसे हरिनाम जप करते हैं, हरिनाम चैंटिंग के समय पर अनेक प्रकार का डिस्ट्रक्शन होता है। यू आर चैंटिंग, हम लोग चैंटिंग करते उसके साथ बातचीत करते हैं, हम लोग चैंटिंग करते उसके साथ अनेक प्रकार का कार्य क्रिया करते हैं, अथवा हम चैंटिंग करते हमारा आंख इधर उधर जाता है। तो इसका अर्थ है कि वी आर नॉट सेटिस्फाइड इन वन सेंस। एक तरह से हम चैंटिंग करने के लिए इच्छा करते हैं, दूसरे तरीके से जो इच्छा को फुलफिल करने के लिए जो स्टेप्स है उसको नहीं ले पाते हैं। अथवा वो कैसे लेना चाहिए हमारे चेतना में नहीं है, तो इसी के कारण वो स्टेप्स नहीं ले पाते। चंडिंग के समय पर बहुत डिस्ट्रक्शन होता है, बहुत अपराध होता है। अजामिल चरित्र में जब नाम की उपाख्यान आता है, नाम की उपाख्यान में क्या होता है, वहां पर कहते हैं कि हरिनाम में अगर कोई अर्थवाद का आरोप लगाता है अथवा पापों का विद्यमानता है, उसी पापों के विद्यमानता के कारण आगे जा करके जीव के जो मोक्ष का वांछा रहेगा, उसी मोक्ष के वांछा उसके जीवन का निर्विशेष मार्ग पर लेने के लिए जो संकट है, उसी संकट पर रास्ते पर अगर चला जाएगा तो फिर अर्थवाद का आरोप का जो बीज पाप के माध्यम से विद्यमान है जीव के हृदय के अंदर, अथवा अपराध करने के जो लक्षण विद्यमान है, आगे जाकर के विकसित होने के चांसेस है। इसी के कारण कहते हैं कि यह अर्थवाद का आरोप अगर जीव करता है अथवा रहता है तो फिर जीव नाम करते हुए भी वो वैष्णव नहीं है, नाम करते हुए भी वो वैष्णव नहीं है, क्योंकि ये अपराध होता है। विश्वनाथ जी कहते हैं, विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं, नाम करते हुए भी वो वैष्णव नहीं हो सकता क्योंकि अर्थवाद का आरोप अथवा अपराध करता है, नाम अपराध करता है। इसी के कारण हम लोग कैसे चंटिंग सही ढंग से करे, शुद्ध तरीके से करे, अपने जो मन के अंदर छुपा हो अनेक प्रकार के मैलों को नष्ट करे, तो अगर उसके लिए स्टेप्स लेते हैं तो फिर बहुत लाभप्रद होता है। तो मन के अंदर छुपा हो जो इंप्रेशंस है वो सारा इंप्रेशंस डिलीट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। और मन के अंदर इंप्रेशंस डिलीट होने के बाद हमको वास्तविक अपना स्वरूप प्राप्त हो जाएगा, हम कृष्ण के चरण में समर्पित होने के लिए समर्थ हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। अगर कोई किसका कुछ कमेंट है तो फिर कर सकते हैं, अथवा प्रश्न वगैरह है तो फिर we don't have time bro, 5 minutes. I'm sorry.
क्या कर रहे
हरे कृष्णा। प्रभु जी की प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा, तो प्रभु जी कहते हैं कि कष्ट हम उठाते हैं, सारे भक्त कष्ट नहीं उठा पाते हैं, कई भक्त कष्ट उठा लेते हैं। हम जब पुस्तक वितरण करते हैं अथवा कुछ तो जब बिगिनिंग में लोग परिश्रम करते हैं तो फिर उनके लिए अगर शुद्धिकरण क्रिया नहीं हुआ है अथवा उन लोगों के चेतना में विकास नहीं हुआ है, इम्प्यूरिटी विद्यमान है जिसके कारण कामिनी कांचन प्रतिष्ठा की इच्छा है, उसके साथ वो प्रचार करते हैं अनेक प्रकार की इच्छाओं के साथ मिश्रित होकर के, चाहे वो पुस्तक वितरण हो अथवा किसी भी प्रकार का क्रियाएं हो, तो फिर कोई समस्या तो नहीं है। हम लोग करते हैं तो फिर यश की आकांक्षा करेंगे। अकाम सर्व काम होवा मुख्य काम उदार अधि तीव्रेण भक्ति। वास्तव में अगर अकाम हो, सर्व काम हो, मुख्य काम नहीं हो, तो फिर वो भक्ति योग तीव्र नहीं होगा। यहाँ पर तीव्र का अर्थ है अहेतु की अप्रतिहता, तो अहेतु की अप्रतिहता तो नहीं है, ये हेतु हो जाता है अथवा प्रतिहत हो जाता है। इसी के कारण यहाँ पर अहेतु की और अप्रतिहता के लिए शुद्ध भक्ति के एसोसिएशन बहुत जरूरी है। जब माता देवहूति पूछने लगी, जो आप पूछ रहे ना, माता देवहूति वो पूछ रही थी भगवान कपिल देव से, काचित तोई उचिता भक्ति किदृशी मम गोचरा। कहने लगी माता देवहूति, पूछने लगी कि हे प्रभु, मैं तो स्त्री हूं, मैं तो स्त्री हूं जैसे आप लोग हो, मैं तो स्त्री हूं, मैं कैसे ये 5 मिनट्स रुक, मैं स्त्री हूं तो मेरा स्वभाव बहुत खराब है, मेरे लिए जो विषय का भोग करने के बाद गृहस्थाश्रम में अनेक साल तक बिताने के बाद जो संस्कार पड़ा हुआ है और आपका भक्ति जो बहुत कठिन है खुरस्य धारा, कैसे आपके प्रति मैं समर्पित हूं, कौन सा टाइप का भक्ति मेरे लिए उचित है। तभी भगवान कभी उनको कहने नहीं लगे कि आप अनेक प्रकार का भक्ति करो, कहने लगे भक्ति जोगो बहुविध मार्ग भाविन भाव्यते, भक्ति जोगो अनेक प्रकार के है, बहुविध बहु प्रकार के है, तो बहु प्रकार के भक्ति जोग उनको कैसे संपादन किया जाए। लेकिन उसको अंत में जाकर के कहते हैं नहीं, बहु प्रकार के भक्ति जोग को तुमको करना नहीं है, किससे एसोसिएशन लेना है वो पूरा सेक्शन वर्णन करते हैं तृतीय स्कंद के भागवत में। तो एसोसिएशन लेना बहुत आवश्यक है कृष्ण चेतना में, और वो एसोसिएशन सही मार्ग से होना चाहिए, सही महाभागवत से होना चाहिए, जो दिव्य पुरुष है जो वहाँ शुद्ध भक्त हैं उनसे होना चाहिए, फिर जाकर के कृष्ण चेतना का एक सही दिशा सही मार्ग मिलता है। जो गुणों से मिश्रित नहीं है, गुणों से पूर्ण मात्रा से मुक्त है, सिर्फ भक्ति ही, केवल भक्ति ही, और कुछ नहीं। जीव क्वालिफाई नहीं है, परंतु भक्ति जो जीव को क्वालिफाई करवा देता है, लेकिन एक प्रोग्रेसिव स्टेज पर होना चाहिए। हर समय जीव को देखना है कि मेरा, जैसे मान दो ये कल आपको चैंटिंग करना है, कल आपको सोलामला, मुझे आज क्लास देना था, इसके कारण मैं कल से तैयार किया हूं मैं कल से तैयार कर रहा हूं, मुझे क्लास देना है आप लोगों को, लेकिन बाय द वे टुमारो मुझे चैंटिंग करना पड़ेगा सोलामला, मैं आज से क्यों नहीं तैयारी करता। आपको चैंटिंग करना पड़ेगा तो कल का चैंटिंग कैसे अच्छा हो, उसके लिए आपको भी तैयारी करना चाहिए ना। टुमारो का भजन क्रिया बाय द वे कैसे होना चाहिए, वी हैव ऑल टू प्रिपेयर अवर सेल्फ, बट वी आर थिंकिंग, हम लोग सोचते हैं नहीं हमारा जो भजन किया सोलामला हो गया, बस हो गया, ये सुप्त रूप में है इच्छाओं के अंदर, हो गया बहुत अच्छा हुआ। इसी के कारण हम कभी तैयारी नहीं करते कि कल का हमारा जो चैंटिंग हो हरिनाम कैसे हो। अगर हम आज से तैयारी करें कि कल का चैंटिंग कैसे हो, कल का चैंटिंग जब होगा तभी हम तैयारी करेंगे, कभी हम कॉन्शियसली चैंटिंग करेंगे कि सोचेंगे अभी चैंटिंग में डिफेक्टिव कहां पर आ रहा है, ताकि मैं आज फिर तैयारी कर सकता हूं कल के लिए। लेकिन जी पहले से ही सोच लेता है कि चैंटिंग दो घंटा लगता है, आधा घंटा लगता है, डेढ़ घंटा लगता है, वो तो हो जाता है, क्या दिक्कत है, ऐसे ही हो जाता है। ओके थैंक यू। हरे कृष्णा 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 हरे, श्रीमद् भागवत महापुराण की समवेत भक्त वृंद की ताई गौर प्रेमानंदी।